ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार का शोर आज शाम समाप्त हो जाएगा। राज्य की 8 लोकसभा सीटों के लिए शनिवार को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने भाजपा और कांग्रेस को चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले बयानों से बचने का निर्देश दिया। छपरा में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में 5 प्राथमिकी दर्ज, इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध 25 मई तक बढ़ाया गया। और आज बुद्ध पूर्णिमा है, बोधगया के महाबोधि मंदिर में हो रही है विशेष पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार का शोर आज शाम समाप्त हो जाएगा। छठे चरण में राज्य के 8 संसदीय क्षेत्रों वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में शनिवार को मतदान होगा। इस चरण में 86 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत दांव पर है। सिवान लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय जबकि अन्य 7 सीटों पर एनडीए और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है। वाल्मीकिनगर में जदयू के सुनील कुशवाहा और राजद के दीपक यादव, पूर्वी चंपारण में भाजपा के राधामोहन सिंह और वीआईपी के राजेश कुमार तथा पश्चिम चंपारण में भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल और कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी आमने सामने हैं। वहीं शिवहर में जदयू की लवली आनंद और राजद की रितु जायसवाल, वैशाली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की वीणा देवी और राजद के मुन्ना शुक्ला, गोपालगंज में जदयू के आलोक कुमार सुमन और वीआईपी के प्रेमनाथ चंचल तथा महाराजगंज में भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के आकाश कुमार सिंह के बीच सीधी टक्कर है। वहीं सिवान में जदयू की विजय लक्ष्मी देवी, राजद के अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय हेना साहब के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सासाराम के करगहर और बक्सर लोकसभा क्षेत्र के नवानगर में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मोतिहारी के गोविंदगंज और पश्चिम चंपारण के सुगोली में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाएं करेंगे। दूसरी तरफ राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का आज सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, वैशाली और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्रों में 11 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में प्रचार अभियान चलाएंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती बक्सर में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य का आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का कार्यक्रम है। निर्वाचन आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के प्रमुख प्रचारकों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले बयानों से बचने का औपचारिक नोट जारी करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
आयोग ने कहा है कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए जिससे समाज में मतभेद पैदा हो और सांप्रदायिकता बढ़े। आयोग ने कांग्रेस के प्रचारकों को सेना के नाम का इस्तेमाल और देश का संविधान खत्म करने की बात भाषण में नहीं करने को कहा है। दोनों दलों से चुनाव अभियान को देश के समग्र और संवेदनशील ढांचे के व्यवहारिक पहलुओं के अनुरूप बनाने के लिए कहा गया है। प्रचार के दौरान दिए गए अनुचित बयानों के मामले में दोनों दलों द्वारा दायर शिकायतों के जवाब में ये निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली से अर्पिता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजीव प्रिया।
छपरा में दो राजनीतिक दलों के बीच हुई हिंसक झड़प और गोलीबारी के मामले में 5 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से 3 केस दर्ज कराए गए हैं। इसमें राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य और पार्टी नेता भोला यादव को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में 1 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पर हमले के मामले में उनके चुनाव एजेंट ने भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर जिला प्रशासन ने इंटरनेट पर प्रतिबंध की अवधि 2 दिन और बढ़ा दी है। अब 25 मई तक इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इस बीच चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात जहानाबाद लोकसभा सीट की। जहानाबाद बिहार के उन 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
दरधा और जमुनई नदी के संगम पर बसा जहानाबाद राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील माना जाता है। यह लोकसभा क्षेत्र लंबे समय तक वामपंथ का सियासी गढ़ रहा। इसके बाद यहां से कांग्रेस और जनता दल के उम्मीदवार भी जीते। वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव से इस सीट पर हर बार सांसद बदलते रहने की परंपरा रही। वर्ष 2019 में इस सीट से जदयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जीत मिली थी। इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। उनके सामने हैं विपक्षी गठबंधन से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव। वहीं पूर्व सांसद अरुण कुमार भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव मैदान में कुल 15 उम्मीदवार हैं, लेकिन जदयू, राजद और बसपा उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों पर विपक्षी गठबंधनों का कब्जा है। कुर्था, जहानाबाद, मखदुमपुर और अतरी सीट पर राजद के, जबकि अरवल और घोसी सीट पर भाकपा माले के विधायक हैं। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में विकास आज भी प्रमुख चुनावी मुद्दा है। साथ ही लोगों के बीच बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों की भी चर्चा है। जदयू उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहां केंद्र और सरकार की उपलब्धियां को लेकर आम लोगों के बीच जा रहे हैं, वहीं राजद और बसपा उम्मीदवार स्थानीय मुद्दों के आधार पर लोगों को गोलबंद करने में जुटे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र के मतदाता त्रिकोणीय मुकाबले में दोबारा जदयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को लोकसभा भेजते हैं या फिर राजद उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव या बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार अरुण कुमार में से किसी एक पर अपना भरोसा जताते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जहानाबाद से आभास रंजन।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIRNews Patna पर भी सुने जा सकते हैं। देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म, बोधगया में उनके ज्ञान प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व का दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर पूजा अर्चना के लिए कई देशों से पर्यटक और श्रद्धालु बोधगया पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
महात्मा बुद्ध की 2568वीं जयंती पर बोधगया में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आज अहले सुबह महात्मा बुद्ध की 80 फीट ऊंची मूर्ति से महाबोधि मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर भी महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना में हिस्सा लेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर महाबोधि मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यहाँ स्थित विभिन्न देशों के बौद्ध विहारों को भी पंचशील ध्वजों और फूलों से सुसज्जित किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाबोधि मंदिर आज रात 11 बजे तक खुला रहेगा। इधर कालचक्र मैदान में 1000 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं के बीच चीवर दान और संघ दान की व्यवस्था की गई है। फल्गु नदी में बढ़ते प्रदूषण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज शाम एक निजी संस्था द्वारा भास्कर घाट पर फल्गु महाआरती का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बोधगया से धर्मवीर भारती।
इधर पटना स्थित बुद्ध स्मृति पार्क में भी इस अवसर पर विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। गोपालगंज, नालंदा, शेखपुरा और बेगूसराय समेत कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। पटना में भी बादल छाए हैं और ठंडी हवा चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले तीन दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है।
बिहार के पूर्वी भाग और उत्तरी भाग पर बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा का प्रवाह काफी बना हुआ है और अगले दो से तीन दिनों तक बना रहेगा, जिसके चलते काफी घने बादल बहुत जगहों पर बनते रहेंगे। वज्रपात, गरज चमक एवं तेज हवा के साथ वर्षा होगी। दक्षिण पश्चिम भागों के साथ गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा, शेखपुरा और सिवान भागों में वर्षा कम होने का पूर्वानुमान है। इन सब क्षेत्रों पर तापमान अपने सामान्य के आसपास और जहां पर वर्षा होगी वहां तापमान अपने सामान्य से नीचे रहेगा।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार और पूर्णिया में तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। प्रदेश में एक साल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 1000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा ने बताया कि एक निश्चित दूरी पर चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र के उसरी पुल के पास पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में 37 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने चुनाव आयोग के निर्देश को प्रमुखता देते हुए लिखा है, धर्म जाति के आधार पर प्रचार से बचें, नहीं करें सेना पर बयानबाजी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार में करोड़पतियों से सजा सातवें चरण का चुनावी अखाड़ा, सबसे अमीर रविशंकर प्रसाद तो सबसे कम संपत्ति नागेश्वर प्रसाद के पास। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 4108 पदों पर बहाली के लिए इंटरव्यू कल से, हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी। प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, चुनाव के हर चरण में बढ़ा वोट पर प्रतिशत में घटा। आज अखबार लिखता है, शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से मांगा बैंक खातों का ब्यौरा। राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख खबर है, 25 को बिहार आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नव बिहार टाइम्स लिखता है, बिहार की विकास यात्रा बताएगा ड्रोन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार का शोर आज शाम समाप्त हो जाएगा। राज्य की 8 लोकसभा सीटों के लिए शनिवार को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने भाजपा और कांग्रेस को चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले बयानों से बचने का निर्देश दिया। छपरा में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में 5 प्राथमिकी दर्ज, इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध 25 मई तक बढ़ाया गया। और आज बुद्ध पूर्णिमा है, बोधगया के महाबोधि मंदिर में हो रही है विशेष पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।